लीला जब भी शिवांशा से मिलती थी वो उस पर हाथ उठाने की कोशिश करती थी। इस बार जब लीला ने शिवांशा के बाल खींचे तब वेद ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था। वेद ने लीला को उसकी इस हरकत पर सजा देने के बारे में पहले ही सोच लिया था, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि उसे इसका मौका इतना जल्दी मिल जाएगा। वेद शिवांशा को लेकर स्पा गया था जहां लीला भी आई हुई थी। वेद ने लीला का ट्रीटमेंट कर रही लड़की को पैसे और थोड़ा लालच दिया तो उसने लीला के बाल काटकर खराब कर दिए थे। शिवांशा ने जब लीला को देखा तो पहले वो हैरान जरूर हुई थी, लेकिन फिर वो हंस रही थी। उसके चेहरे पर हंसी देखकर वेद को बहुत अच्छा लग रहा था। वेद ने यही सोचा था कि वो पूरा दिन शिवांशा के साथ बिताएगा, लेकिन इस बीच उसके पास वंश का कॉल आ गया था। वेद ने गहरी सांस ली और कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ से वंश की आवाज आई, भाई प्लीज, और कितना टाइम लगेगा आपको? मैं और ज्यादा देर तक नहीं संभाल पाऊंगा। आप अच्छे से जानते हैं कि आप हमारी कंपनी का मेन फेस हैं और आपके बिना ये कन्विंस नहीं होने वाले हैं। ये डील पहले ही हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्लीज आपको आना ही होगा। आपके लिए तो ये इंतजार करने के लिए भी तैयार है। ठीक है, मैं पहुंचता हूँ, वेद ने शांत लहजे में जवाब दिया और फिर शिवांशा की तरफ देखा। शिवांशा भी यही उम्मीद कर रही थी कि वेद पूरा दिन उसके साथ बिताने वाला है। कॉल आने के बाद शिवांशा का चेहरा एक पल के लिए उतर गया था, फिर वेद के देखते ही वो हल्का सा मुस्कुराकर बोली, मैंने आपसे पहले ही कहा था मैं ठीक हूँ और आप जा सकते हैं, मेरे लिए आपको अपने काम को नज़रअंदाज करने की ज़रूरत नहीं है। वेद ने उसकी बात पर सिर हिलाया। उसे कभी कभी हैरानी होती थी कि वो उसके एक छोटे से एफर्ट से काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती थी। तो चलो फिर चलते हैं, वेद बोला और गाड़ी स्टार्ट करने लगा। अरे नहीं, आप मुझे घर छोड़कर वापस ऑफिस जाओगे तो आपको देर हो जाएगी, मैं ऑटो कर लूंगी या फिर, शिवांशा हिचकिचाते हुए बोल रही थी। सच तो ये था कि उसे भी अकेले जाने में काफी डर लग रहा था, वो कभी इस तरह अकेले कहीं नहीं गई थी। वेद ने उसकी बात काटते हुए कहा, किसने कहा कि मैं तुम्हें घर छोड़कर ऑफिस जाने वाला हूँ? तुम मेरे साथ चल रही हो, मैंने यही सोचा था कि पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताऊंगा और ये पता नहीं था कि थोड़ा टाइम ऑफिस में भी स्पेंड करना पड़ेगा। डोंट वरी, मैं मीटिंग जल्दी खत्म कर दूंगा और फिर हम बाहर डिनर करने चलेंगे। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वेद ने फिर से कहा। वो बार बार एक ही बात बोल रही थी, तुम्हें ज़रूरत नहीं होगी लेकिन मुझे अपनी वाइफ के साथ टाइम बिताने की ज़रूरत है। मुझे अच्छे से उसे जानना है कि उसे क्या पसंद है या नहीं। अब चुप करके बैठो, वेद ने उसे प्यार से डांटते हुए जवाब दिया। शिवांशा के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई थी। वो वेद को ड्राइव करते हुए देख रही थी जबकि वेद का पूरा ध्यान सामने की तरफ था। भले ही उसकी नज़रें शिवांशा पर ना हो लेकिन शिवांशा किस तरह से उसे देख रही थी वो ये अच्छे से महसूस कर रहा था। अगर मुझे देखने से मन भर गया हो तो थोड़ा आसपास बाहर भी देख लो, मेरे अलावा भी दुनिया में और चीज़ें मौजूद हैं, वेद ने सिर हिलाकर कहा। जब भी वेद शिवांशा को अपने साथ अकेले कहीं भी लेकर जाता तब वो ऐसे ही बाहर देखने के बजाय वेद को ड्राइव करते हुए देखती रहती थी। लेकिन मेरी दुनिया तो आप में ही मौजूद है, मुझे आप ही को देखना है, शिवांशा ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया। वेद का एक हाथ स्टीयरिंग पर तो दूसरा गियर पर था। शिवांशा ने अपना हाथ वेद के हाथ पर रखा। वेद ने एक नज़र उसकी तरफ देखा। तो तुम्हारा मेरा हाथ पकड़ने का मन कर रहा है, वेद ने भौहें चढ़ाकर पूछा। हाँ, शिवांशा ने जवाब में इतना ही कहा। वो अपना हाथ अलग करने को हुई तभी वेद ने उसके हाथ को थाम लिया था। अच्छा बताओ, और क्या क्या करने का मन करता है तुम्हारा, वेद ने धीमी आवाज में पूछा। बस मन करता है कि आपका हाथ पकड़कर हम दोनों एक लंबी सी वॉक पर जाएं और हम दोनों ढेर सारी बातें करें और फिर खुले आसमान के नीचे कैंडल लाइट डिनर करें, हमारे आसपास कोई ना हो, बस हम दोनों ही हों, शिवांशा ने बताया। वेद को सब बताते हुए शिवांशा खुद को वेद के साथ इसी तरह इमेजिन कर रही थी। आज से पहले उसके कभी ऐसे ख्वाब नहीं थे और ना ही उसने किसी के साथ इस तरह कोई रोमांटिक डिनर का सपना देखा था। शिवांशा उसके बाद चुप हो गई और वो थोड़ी खोई हुई लग रही थी। वेद ने ब्रेक लगाए तो उसे अचानक से होश आया। सपनों की दुनिया से बाहर आओ, ऑफिस आ गया है, वेद ने उसकी तरफ देखकर कहा। जहां वेद उसके साथ गाड़ी में नरम व्यवहार कर रहा था और उसके चेहरे के भाव भी बिल्कुल हल्के थे, उससे अलग गाड़ी से बाहर निकलते ही वेद के चेहरे के भाव बिल्कुल सख्त हो गए थे। जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकला, दो सिक्योरिटी गार्ड उसके आगे तो दो पीछे खड़े हो गए थे। वेद ने दूसरी तरफ जाकर शिवांशा के लिए दरवाजा खोला और उसका हाथ पकड़कर उसे गाड़ी से बाहर निकाला। शिवांशा इस वक्त चौहान एम्पायर के पार्किंग एरिया में थी, लेकिन जब उसकी नज़र चौहान एम्पायर पर गई तो वो एक पल के लिए सुन रह गई थी। वो काफ़ी बड़ी और शानदार बिल्डिंग थी। शिवांशा पहली बार अपनी जिंदगी में इस तरह की किसी जगह पर आई थी। उसे हिचकिचाहट हो रही थी इसलिए उसने वेद के हाथ को कसकर पकड़ लिया था। वेद ने अपने अंगूठे से उसके हाथ को सहलाया और धीरे से कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम किसी अनजान जगह पर नहीं आई हो, ये हमारा ही एम्पायर है। हाँ, पर मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, मैं गाड़ी में बैठ जाती हूँ, आप अंदर चले जाइए, मैं आपका वेट कर लूंगी, शिवांशा ने हड़बड़ाकर जवाब दिया। घबराहट के मारे उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। वेद ने उसकी एक नहीं सुनी और उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाने लगा। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, सब उन्हें गुड आफ्टरनून विश कर रहे थे। शिवांशा की नजरें पूरे टाइम झुकी हुई थी और हमेशा की तरह घबराहट में उसने वेद की हथेली को अपने नाखूनों से नोच डाला था। लगता है मुझे अब इसकी आदत डाल लेनी चाहिए, वेद ने गहरी सांस लेकर मन ही मन कहा और फिर अपने हाथ की तरफ देखा। वेद शिवांशा को लेकर प्राइवेट लिफ्ट की तरफ बढ़ा और कुछ ही देर में वे बिल्डिंग के 20वें फ्लोर पर थे। जैसे ही वेद लिफ्ट से बाहर आया, वंश उसके सामने आ गया था। उसके साथ में प्रतीक भी था। शिवांशा को अचानक वहां देखकर वंश के चेहरे के भाव एक पल के लिए बिगड़ गए थे। फिर उसकी नजर वेद की तरफ गई तो वो शांत हो गया था। भाभी, यहाँ ऑफिस में क्या कर रही है? उनका यहाँ कोई काम नहीं है, वंश के मुंह से निकला। शिवांशा को उसका सवाल काफी अजीब लगा, सिर्फ शिवांशा को ही नहीं, प्रतीक को भी। अब उसे अपने यहाँ आने के फैसले पर पछतावा हो रहा था और वो वेद से यही कहना चाहती थी कि उसने यहाँ आने से पहले ही मना किया था। शिवांशा या किसी और के कुछ कहने से पहले ही वेद ने सख्त आवाज में जवाब देते हुए कहा, आराध्या भी तो यहाँ काम करती है, उसे तो कोई नहीं कहता कि वो यहाँ क्या कर रही है। आज नहीं तो कल शिवांशा भी ऑफिस ज्वाइन करेगी और बेहतर होगा कि वो यहाँ के माहौल को अच्छी तरह समझ ले। आई होप तुम आगे से ऐसे रिडिकुलस सवाल नहीं पूछोगे। जी भाई, सॉरी, वो मैं थोड़ा नर्वस हो रहा था, क्लाइंट वेट कर रहे हैं, वंश ने तुरंत माफी मांगते हुए कहा। वेद ने उसे फिलहाल के लिए अनदेखा कर दिया। कोई और समझे या ना समझे, लेकिन वो ये अच्छे से महसूस कर सकता था कि वंश अभी भी शिवांशा को वेद के आसपास देखकर हड़बड़ा जाता था।
प्रतीक, शिवांशा को मेरे केबिन में लेकर जाओ, मैं मीटिंग खत्म करके तुम दोनों को वहीं पर मिलता हूँ, वेद ने प्रतीक की तरफ देखकर कहा। फिर वो शिवांशा की तरफ मुड़ा और नरम लहजे में बोला, बी कम्फर्टेबल, तुम रिलैक्स करो और अपने लिए कुछ मंगवा लेना। एक बार फिर कह रहा हूँ, इस जगह पर जरूर तुम पहली बार आई हो, लेकिन ये हमारे घर की तरह है। शिवांशा ने उसकी बात पर हामी भरी और हल्का सा मुस्कुराई। वेद को मीटिंग में जाना था, वो बिजी होने के बावजूद उसे पहले कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहा था। वेद वंश के साथ जाने लगा, वहीं शिवांशा प्रतीक के साथ वेद के केबिन में जाने के लिए वापस लिफ्ट में चली गई थी। जैसे ही लिफ्ट बंद हुई, वेद ने वंश की तरफ देखा और बिना किसी भाव के कहा, मीटिंग के बाद हम बात करेंगे, तुम मेरी वाइफ के साथ इस तरह रूड नहीं हो सकते हो। अगर तुम्हें उसे एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो बता देना, मैं उसे लेकर कहीं और रहने चला जाऊंगा, फिर तुम्हें उसका चेहरा नहीं देखना पड़ेगा और ना ही तुम बार बार उसकी इंसल्ट करोगे। वेद के शब्द सुनकर एक पल के लिए वंश हैरान रह गया था और वो अपनी जगह पर ही रुक गया था, लेकिन वेद उसके लिए नहीं रुका और वो आगे बढ़ गया था। वंश ने अपनी मुट्ठियों को कसकर बांध लिया था। वो धीरे से बड़बड़ाकर बोला, अच्छा ठीक है, मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया, पर ये खुद भी तो उन्हें पूरे दिन घर पर रखते थे। मैंने कब कहा कि मुझे उनका चेहरा नहीं देखना या भाई को हमसे अलग होने की जरूरत है? लगता है आराध्या के साथ साथ भाई ने भी मुझे गलत समझने की कसम खा रखी है। वंश थोड़ा चिढ़ गया था। उसने गहरी सांस लेकर खुद को सामान्य किया और फिर मीटिंग रूम में आ गया था। वहीं प्रतीक ने शिवांशा को वेद के केबिन के बाहर छोड़ा। आप अंदर जाइए, मैं आपके लिए कुछ भिजवा देता हूँ, और नर्वस मत होइए, यहाँ सब आपको वेद भाई की वाइफ के तौर पर जानते हैं, तो आपको भी उसे मेंटेन करके रखना चाहिए, प्रतीक ने उसे समझाया। शिवांशा ने उसकी बात पर हामी भरी, वो केबिन के अंदर चली गई थी। वेद का केबिन वाकई काफी बड़ा था और साथ ही काफी कंफर्टेबल भी। शिवांशा अंदर जाते ही इधर उधर देखने लगी, तभी उसकी आंखें छोटी हो गई थी। वहां सामने पहले से ही कोई बैठा हुआ था जो वेद के आने का इंतजार कर रहा था। अच्छा, तो आप हैं हमारी छोटी सी बड़ी भाभी जिनके चक्कर में भाई का शेड्यूल बिगड़ा हुआ है, वो तेज था, प्रतीक का छोटा भाई। शिवांशा को देखते ही वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ा। तेज काफी फ्रेंडली वे में बात कर रहा था। शिवांशा उसे देखकर थोड़ा हिचकिचा गई थी, वो अपने कदम पीछे लेने लगी। तभी तेज बोला, अरे आप तो डर गई, आप ही के पति का केबिन है, आप यहाँ चोरी करने थोड़ी आई हैं जो इस तरह मुझे देखकर घबरा रही हैं, आप तो यहाँ की मालकिन हैं, आइए बैठिए।
नहीं, मैं ठीक हूँ, शिवांशा ने हड़बड़ाकर जवाब दिया। आप बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही हैं, प्लीज आप बैठिए ना, वरना मुझे अजीब लगेगा, तेज ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, जिस पर शिवांशा को वहां पर बैठना ही पड़ा। शिवांशा सोफे पर जाकर बैठ गई थी। नर्वसनेस में वो अपने अंगूठे से दूसरे हाथ की हथेली पर स्क्रैच कर रही थी। तेज ने उसकी इस हरकत को देखा तो वो हल्का सा मुस्कुरा दिया था। आप काफी थकी हुई लग रही हैं और साफ दिख रहा है कि कहीं घूमने के बाद बाहर से आई हैं, अपने लिए कुछ खाने के लिए क्यों नहीं मंगवा लेती, उन्हें आने में टाइम लगेगा, तेज बोला। नहीं, मैं ठीक हूँ, आपको कुछ चाहिए तो आप मंगवा लीजिए, शिवांशा ने जवाब दिया। ऐसे कैसे ठीक है, अगर आप मना करेंगी तो फिर मुझे लगेगा कि आप मुझे अपनी फैमिली नहीं समझती हैं और या फिर मेरी वजह से कुछ मंगवा नहीं रही हैं। आप कुछ नहीं मंगवाएंगी तो फिर मैं भी नहीं मंगवाने वाला, तेज ने बच्चों की तरह नाराज होते हुए बोला। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, शिवांशा ने धीमी आवाज में जवाब दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो तेज से कैसे डील करे, क्योंकि घर पर बाकी लोग उससे इतनी ज्यादा बात नहीं करते थे और ना ही इतना फ्रेंडली वे में बात करते थे। मुझे लगता है आप शर्मा रही हैं, मैं ही आपके लिए कुछ मंगवा देता हूँ, पर फिर खाने के लिए मना मत कीजिएगा, तेज ने शिवांशा की तरफ देखकर कहा, जिस पर मजबूरी में उसे हामे सिर हिलाना पड़ा। तेज तुरंत मुस्कुराते हुए दूसरी तरफ गया। उसे बहुत हंसी आ रही थी, पर वो शिवांशा के सामने हंस भी नहीं सकता था। उसने मन ही मन कहा, ये तो सच में बहुत भोली है। थैंक गॉड वेद भाई की वाइफ है, वरना अब तक नव्यांशी इसे कच्चा चबा चुकी होती। आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई उस चुड़ैल बहन से किस तरह अपनी पत्नी को बचाकर रखते होंगे। तेज ने तुरंत एम्पायर के फूड एरिया में कॉल किया और शिवांशा का नाम लेकर उसने काफी सारा खाना मंगा लिया था। अगले 40 मिनट में शिवांशा के सामने जंक फूड से लेकर प्रॉपर मील तक इतना कुछ खाना रखा हुआ था जो आराम से 7-8 लोग खा सकते थे। ये आपने इतना सारा खाना क्यों मंगवाया है? मैंने मना किया था ना, क्या कोई और भी आने वाला है? शिवांशा ने हैरानी से कहा। बिल्कुल नहीं, मैंने तो सब कुछ आपके लिए मंगवाया है, और आपको ज्वाइन करने के लिए मैं भी थोड़ा बहुत खा सकता हूँ, पर मुझे ज्यादा भूख नहीं है। मुझे आपकी चॉइस के बारे में पता नहीं था ना, इसलिए मैंने सब कुछ मंगवा लिया। और ऊपर से आपको तो पता ही होगा कि भाई को खाना वेस्ट करने वाले लोग पसंद नहीं है, ये तो आपको पूरा खत्म करना होगा। तेज ने अपनी हंसी को काबू करके कहा, जिस पर शिवांशा की आंखें बड़ी हो गई थी। इतना खाना वो एक साथ तो क्या अगले 3-4 दिनों तक भी खत्म नहीं कर सकती थी। शिवांशा ने घबराकर अपनी साड़ी का पल्लू पकड़ लिया था। वहीं तेज ने अपनी हंसी रोकने के लिए अपने मुंह के आगे हाथ लगा लिया था। शिवांशा का मासूम चेहरा देखकर उसे दया भी आ रही थी और साथ में हंसने का भी मन कर रहा था। जब तक वेद नहीं आने वाला था, उसने सोच लिया था कि वो उसे अच्छा खासा परेशान करने वाला है।